ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणं। सो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 2 श्लोक नंबर 1 और 2 का पठन करेंगे। मैं श्लोक का पढ़ता हूं और आप मेरे पीछे दोहराइए। सात दो एक। श्री नारद उवाच भ्रातरी एवं विनिहते, ठीक है ना, हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकश्यपुः राजन् पर्यतप्यत् रुषा शुचा। श्रीनारद उवाच भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकश्यपुराजन् पर्यतप्यदृशाशुचा। शब्दार्थ तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्री नारद उवाच, श्री नारद मुनि ने कहा, भ्रातरी जब उसका भाई हिरण्याक्ष एवं इस प्रकार विहिनते मार डाला गया हरिणा हरि द्वारा क्रोड़मूर्तिना वराह के रूप में हिरण्यकशिपुः हिरण्यकशिपु ने राजन हे राजा पर्यतप्यत पीड़ित रूषा क्रोध से शुचा शोक से। श्री नारद मुनि ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु को मार डाला तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याक्ष को मार डाला। आई एम सॉरी, आप सब लोग चुप रहे हैं। और एक बार बढ़ता, हे नारद मुनि, श्री नारद मुनि ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और विलाप करने लगा। तात्पर्य, युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा था कि हिरण्यकश्यपु अपने ही पुत्र प्रह्लाद से इतना ईर्ष्या क्यों करता था। अतएव नारद मुनि ने कथा कहानी प्रारंभ की, किस प्रकार हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु का कट्टर वैरी बन गया था। तो अगला श्लोक 7.2 आ गया। आह चेदम ऋषापूर्ण, मैं एक एक बोलता हूं, आहा आहा इदम, आहा च इदम ऋषा पूर्ण संदष्ट दशनश्चदा कोप उज्ज्वालभ्याम चक्षुर्याम निरीक्षन द्रुमं अंबरम। आह चेदं रुषा पूर्णा संदष्टा दशनच्छदः कोपोज्ज्वलभ्यां चक्षुर्भ्याम निरीक्षन् धूम्रमम्बरम्। आह चेदं रुषा पूर्णा संदष्टा दशनच्छदः कोपोज्ज्वलभ्यां चक्षुर्भ्याम् निरीक्षन् धूम्रमम्बरम्। आह चेदं रुषा पूर्णा संदष्टा दशनच्छदः कोपोज्ज्वलभ्यां चक्षुर्भ्याम् निरीक्षन् धूम्रमम्बरम्। आह चेदं रुषा पूर्णा संदष्टा दशनच्छदः कोपोज्ज्वलभ्यां चक्षुर्भ्याम् निरीक्षन् धूम्रमम्बरम्। प्रभुजी आहचेदं रुषा पूर्णा संदष्टा दशनच्छदः भूज्वलभ्यां चक्षुर्भ्याम्। आहचेदं रुषा पूर्णा संदष्टा दशनच्छदा कोपोज्ज्वलभ्यां चक्षुर्भ्याम् निरीक्षन् धूम्रमम्बरम्। माताजि
Thank you.
आहतेदं शापोन शब्दार्थ आहा कहा च तथा इदम यह रूषा क्रोध पूर्ण भरा हुआ संदष्ट काट दिया गया दशान छदहा जिसके होंठ कोप उज्ज्वलभ्याम क्रोध से जलता हुआ चक्षुर्भ्याम आंखों से निरीक्षण देखते हुए धूम्रम धूमल अंबरम आकाश को क्रोध से भरकर तथा अपने होंठ काटते हुए हिरण्यकश्यपु ने क्रोध से जलती हुई आंखों से आकाश को देखा तो वह सारा आकाश धूमिल हो गया। इस प्रकार वह बोलने लगा। आगे हम देखें तात्पर्य असुर प्राय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भगवान के प्रति ईर्ष्या करते हैं और उनसे शत्रुता रखते हैं। हिरण्यकश्यपु ने भगवान विष्णु को मारने तथा उनके धाम वैकुंठ लोक को विध्वंस करने का विचार किया तो ये उसके शरीर के उद्वेग थे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकम् वंदेहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज नया अध्याय शुरू हुआ है, अध्याय 2 स्कंद 7 में। अब नारद कह रहे हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ऐसे ऐसे हुआ है, विष्णु भगवान जब विष्णु रूप में आके हिरण्याक्ष को मार डाले तो हिरण्यकश्यपु जो उनका भाई था वो बहुत क्रोधित हो गए और ऐसे बोलने लगे। तो नारद मुनि कहां से आए? अभी हम तो चर्चा कर रहे हैं, नारद मुनि और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद हो रहा है इसका वर्णन हो रहा है। एक्चुअली अगर हम पीछे चलते हैं तो 7 अध्याय 7 पहले स्कंद 13 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज का जो प्रश्न था, क्या भगवान समदर्शी है कि नहीं, तो बताते हैं बहुत सारी चीजें बता के। फिर नारद मुनि और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद हुआ था उसके बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। सातवीं अध्याय आज, सातवीं स्कंद पहले अध्याय 14 श्लोक से शुरू हुआ है, ये चलते रहेगा, बहुत देर तक चलेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया, मेरा भाई को विष्णु ने मार डाला। ये देवता लोग ना, देवता लोग पूरा मिलके मेरा भाई के ऊपर कंप्लेंट किया और विष्णु भगवान विष्णु आ गया और आके मेरा भाई को मार, ये देवताओं को खत्म करना चाहिए और विष्णु को भी मैं खत्म कर दूंगा। अगले हम श्लोक में देखते हैं वो अपना असुर भाइयों से असुर सेना से ऐसे बोलते हैं, देखो ये देवदेव, वो कहते हैं हाँ पहले स्टार्टिंग में कहते हैं देखो भगवान असुर के बात भी सुनते हैं और देवता के बात भी सुनते हैं, मगर ये बार देवता के बात सुन के मेरा भाई को मारा है और ये विष्णु को ना मैं ऐसे सफर सिखाऊंगा, विष्णु का सिर मैं छेदन कर दूंगा, छेदन करके उनके रक्त से हिरण्याक्ष को मैं तृप्त करूंगा। वो अभी मर गया है मगर मैं विष्णु को मार के उनके रक्त से मैं हिरण्याक्ष को बड़ा संतुष्ट कर दूंगा। हाँ आप लोग ना, आप लोग क्या करना है, आप लोग चले जाओ पृथ्वी पर, फटाफट चले जाओ, क्या करना है, मेरा बढ़िया प्लान है। उनका प्लान बताते, क्या प्लान है, देखो ये देवता इतना बलवान कैसे हो रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय द्वारा ये बहुत सारे राजा हैं, बहुत बड़े अच्छा राजाएं हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये ब्राह्मण को नियुक्त कर रहे हैं यज्ञ करने के लिए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ का फल जो है देवता को दे रहे हैं। देवता को जब यज्ञ का फल मिल जा रहा है वो बड़ा बलवान बन रहे हैं, तो रूट कॉज उसका मूल कारण क्या है, ये ब्राह्मण जो है यज्ञ कर रहे हैं। तो असुर सेना भाई तुम लोग जल्दी पृथ्वी पर जाओ और ब्राह्मणों को खत्म करो, यज्ञशालाओं को खत्म करो, और यज्ञ के लिए जो भी सामग्री किधर से मिलता है, गाय से मिल रहा है, गाय से घी सब कुछ मिल रहा है, गाय से, गाय को भी बोलने का जरूरत क्या है, चलो निकलो अपना सेना उनसे ये कहते हैं। कहने के बाद अपना भाई हिरण्यक्ष का संस्कार करके अपना भतीजा और हिरण्यक्ष के पत्नी से कहते हैं, बात करते हैं, बहुत सारे चीजें बोलते हैं। हिरण्यक्ष के पत्नी बहुत दुखी होकर रोदन कर रही है, उनके बच्चे भतीजे भी बहुत रोदन कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु जाके उनको बहुत ज्ञान की बातें समझाते हैं, ये आत्मा के बारे में बताते हैं, वो बताते हैं देखिए कितना अच्छी बातें, बहुत ज्ञानी है, वेदों को बहुत अच्छा तरीका से जान लिया है, वेदों का सार जान लिया है, बहुत ज्ञानी है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु बताते हैं ये हम लोग ना जैसा है, जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं और प्यास लगा है तो प्याऊ के पास जाके एक एक करके पानी पी के फिर अपना अपने गम्य स्थान को चले जाते हैं। जब पानी पीने के लिए गया उधर दो तीन लोग मिल जाते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों बहुत निकट हैं, बहुत एक दो बातें भी होता है, फिर पानी पी के अपना अपना गम्य स्थान को चले जाते हैं। वैसा ही हम लोग इस पृथ्वी पर आते हैं, कुछ दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं। ये पूरा बात कौन बता रहे हैं, हिरण्यकशिपु बता रहा है और आत्मा के बारे में भी बताता है। हाँ फिर क्या बताते हैं, देखिए उन्होंने एक राजा सुयज्ञ राजा का कहानी बताते हैं, जो राजा सुयज्ञ बहुत अच्छा राजा था और उनका पत्नी बहुत रानिया अच्छा ही थी। सुयज्ञ युद्ध में मारा जाता है। जब युद्ध में मारा गया उनके रानिया सब लोग इतना रोदन करते हैं उनका शरीर के ऊपर गिर गिर के रोते रोते मरा हुआ अपना पति को देख के इतना रोदन करते हैं कि यमपुरी में वो रोदन सुनाई देता है। हिरण्यकश्यपु बता रहे हैं जो कहानी हिरण जब यमपुरी में रोदन सुनाई दिया यमराज देखते हैं अरे इतना रोदन कौन कर रहा है मेरे तक पहुंच रहा है चलो ठीक है इनको मैं बताता हूं ज्ञान देता हूं। यमराज एक छोटा बालक के रूप में आते हैं वो रानियों के पास जो रो रहे थे अपना पति सुयज्ञ राजा के मृत शरीर को पकड़ के। हे रानिया अब तो एज में उम्र में बहुत बड़े लग रहे हैं मैं तो इतना छोटा हूं मैं देख रहा हूं अनेक अनेक जीव पैदा हो रहा है मर रहा है हर जीव जो पैदा हुआ है वो तो मरना ही है अब किस लिए रोदन कर रहे हो। ये पूरा ज्ञान वो एक्चुअली यमराज बता रहे हैं बालक के रूप में ये हिरण्यकश्यपु बता रहे हैं अभी जो श्लोक आने वाला है ये तो ये बता। ऐसे बहुत सारे हाँ इतना अच्छे बात बताते हैं और आखिर में ये बताते हैं देखिए 47 में बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं कि यावलिग्नानिन्द्रितो ह्यात्मा तावत् कर्म निबंधनम् ततो विपर्यय श्लोको ततो विपर्यय क्लेशो माया योगो अनुवर्तते। मन बुद्धि अहंकार से ये जो सूक्ष्म शरीर जब तक आत्मा से इसका कवर होता है तब तक अपना काम कर्म से बद्ध हो जाता है। हिरण्यकश्यपु बता रहे हैं जो बालक बता रहा है जब तक ये आत्मा ऐसे कवर आत्मा के ऊपर ये जो कवरेज है जब तक होगा तब तक ये क्लेश अनुभव करते ही रहेगा। आत्मा का एक्चुअली आत्मा जो है शाश्वत है आत्मा शाश्वत है और उसको क्या शरीर मिल रहा है अशाश्वत निस्तर शरीर मिल रहा है जो टेम्पररी शरीर मिल रहा है वो चाहता है मुझे शाश्वत शरीर चाहिए और मिल रहा है अशाश्वत शरीर जो कुछ दिन के बाद खत्म हो रहा है फिर बोलते हैं ये शरीर नहीं चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा उसको बहुत सर्दी लग रहा है माँ पहना रही है एक पतला सा स्लीवलेस का एक बनियान वो रोता है नहीं इसको निकालो ठीक है निकाल दिया दूसरा कोई दूसरा पहनाया उसको चाहिए गर्म स्वेटर मगर उसको पहना जा रहा है पतला सा बनियान पतला सा ये वो तो रोएगा बिल्कुल वो रोएगा जब तक उसको स्वेटर नहीं मिलता तब तक वो रोते ही रहेगा। जब स्वेटर मिल गया हाँ ठीक है गर्म अच्छा गर्म लग रहा है। वैसा ही ये आत्मा जो है ये शाश्वत आत्मा है आत्मा को मिल रहा है टेम्पररी शरीर जब ये टेम्पररी शरीर मिल रहा है ये बोलते हैं ये मेरा एक्चुअली नहीं वो दुखी है। तो जब तक ये भगवान के धाम नहीं जाता है वैकुंठ धाम नहीं जाता है गोलोक वृंदावन धाम नहीं जाता है जिधर हमारा जो शरीर है वो शाश्वत रहेगा जो शरीर मिलता है वो शाश्वत रहेगा तब तक ये आत्मा चिल्लाता रहेगा दुखी रहेगा बस। इसी अर्थ को ये रानियों को बताता है बता के बालक फिर वो सुयज्ञ के पत्नियों को बहुत शांत करता है और हिरण्यकश्यपु और बता रहा है कौन सा कुलिंग पक्षी दो पक्षियां होते हैं कुलिंग पक्षी जिसको वो शिकारी अपना इसमें एक स्त्री कुलिंग पक्षी मादा कुलिंग पक्षी को फंसा दिया ये जो नर कुलिंग पक्षी है वो बड़ा रोदन करता है, भगवान को क्या मिलेगा, इतना सारा जीव है, मेरा पत्नी को फंसा दिया, इससे बेटर, इससे अच्छा ये है कि मैं मर जाऊं। ऐसा ऐसा सोचते इधर वो देखते रहा, पीछे से वो हंटर शिकारी, शिकारी क्या करता है, बाण चलाता है, शिकारी बाण चला के इसको इसको खत्म करता है, दोनों मर जाते हैं। तो ये एक्चुअली वो रोदन करते करते बहुत सारे बातें बोलते हैं, मेरा पत्नी इतना कर रही थी, मेरा बच्चे हैं, बच्चे माँ के लिए वेट कर रहे हैं, खाना कुछ वो कुछ आहार लेके आके बच्चों को खिलाएगी, बोल के बच्चे पूरा देख रहे हैं, ये क्या होता है। इतना होने के बाद भी आखिर में ये मर जाता। ये पूरा हिरण्यकश्यपु बता के अपना भाई के रानी और उनको बहुत ये राहत देते हैं। तो ये एक्चुअली ये पूरा बालक बता रहा है, बालक रूप में यमराज सुयज्ञ के रानियों को बता रहे हैं, ये जो है हिरण्यकश्यपु इधर अपने भाई के रानी, अपने भाई के पत्नी और भतीजों को बता रहे हैं, इसलिए आप दुख नहीं करना, आप दुख नहीं करना, इसका कोई ये तो देह 62 7 2 60 60 7 2 60 में वो कहते हैं कि ये तो शरीर खत्म हो जाएगा, तो आप किस लिए शोक कर रहे हो, शरीर तो खत्म होना ही है, अब किस लिए शोक कर रहे हो, हर शरीर खत्म होना ही है, किस लिए शोक कर रहे हो, शोक छोड़ दीजिए। आप ये सोचना चाहिए, देखिए वो कह रहा है केवल अज्ञानवश मनुष्य सोचते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा ये पूरा है, मेरा ये है, मेरा दूसरे का ये है, ये पूरा सोचते रहता है, ये शारीरिक भेदभाव से हो रहा है, शारीरिक संबंध से हो रहा है, तो इसको शरीर तो जले जाएगा, तो इसलिए आप शांत हो जाओ, तो शांत हो जाते हैं। शांत होने के बाद ये 61 62 61 आखिर शांत हो गए। फिर नारद मुनि बताते हैं ये शांत होने के बाद हिरण्यकश्यपु अपना माँ को और माँ दीति को भी शांत करते हैं और हिरण्यकश्यप के पत्नी को ऐसे शांत करते हैं, पुत्र शोक से अपने माँ दीति को और पति का शोक से हिरण्यकश्यप के पत्नी को राह दिलवाते हैं। ये अध्याय समाप्त होता है। 61 श्लोक है, हम एक और दो हमने देखा है। फिर इसके बाद एक्चुअली ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये इतना बात किया, इतना ज्ञान की बात किया, फिर वो सोचता है मैं जो है अब तपस्या करना है, तपस्या करके शक्ति पाना है, किस लिए, नंबर एक अमर बनना, नंबर दो कोई मुझे नहीं हाराना। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अब तपस्या शुरू करते हैं, ब्रह्मा जी के ऊपर हजारों साल तपस्या करते हैं। अगर हम हिरण्यकश्यप को थोड़ा सा गहराई में समझने का प्रयास करते हैं, हमें समझ में आता है कि हिरण्यकश्यप इतना ज्ञानी है, इतना सारा बताया है, पूरा 60 श्लोक में अगर आप देखते हैं, ऐसे सच्ची में बहुत हाई लेवल ऊंचा ज्ञान वो वेदों का सार बता रहा है, मगर ये पूरा बताने के बाद वो सोचता है कि विष्णु को मैं कैसे मारूं और मैं कैसे अमर बनूं और जा के ब्रह्मा से, और नॉट ओन यही नहीं, मैं ब्रह्मा का जो है वो लोग भी मैं जीतना है, मुझे कोई हराना नहीं, ब्रह्मा को भी मैं हराऊंगा, ब्रह्मा से भी ऊपर जाके अपना विष्णु को मैं मार डालूंगा, ये पूरा उनका दिमाग के अंदर आइडिया। अब गए जाके तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी के ऊपर। यही होता है, भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि अध्याय 7 में अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत् अल्पमेधसाम देवान देव ये जो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम। जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो देवताओं का पूजा करते हैं, जो अल्प बुद्धि वाले ऐसे देवताओं को पूजा करके जो भी वर मिल रहा है वो तो एक्चुअली मैं खुद दे रहा हूँ। भगवान बताते हैं ये अल्प बुद्धि क्यों आता है, क्यों अल्प बुद्धि आता है। भगवान अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 भगवत गीता में बताते हैं, कामस्थैस्तैहृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामस्थैस्तैहृत ज्ञान, ये काम अनेक अभिलाषाएं, अनेक अनेक विशेष डिजायर्स इच्छाएं, अनेक अनेक काम इच्छाएं, भोगने का इच्छाएं जो है एक ज्ञान को अपहरण कर लेता है। जो ज्ञान को ऐसे अपहरण के बाधित हो गया है अपने काम के इच्छाओं से, वो अन्य देवताओं के पास जाके पूजा पाठ करते हैं। मगर भगवान कहते हैं जो भी देवता देते हैं वो मेरे द्वारा दिया जा रहा है। 7:20 भगवद गीता में। और भगवान 21 में फिर बताते हैं, यो यो यम यम तनुम भक्त श्रद्धा याचितुम इच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धा तामेव विदधाम यहम। जो जो भक्त ऐसे देवताओं का अपने अपने विधानों से पूजा पाठ करने का निश्चय किया है, उनके जो निश्चय को, उनके जो भक्ति देवता के ऊपर है उसको मैं दृढ़ करूंगा। भगवान कृष्ण कह रहे मैं दृढ़ करूंगा, देवताओं के भक्ति इनके ऊपर आए ठीक है भक्ति, और देवता जो देते हैं वो पूरा मेरे द्वारा ही दिया जा रहा है। तो प्रश्न ये उठता है भगवान कृष्ण कैसे उनके मन में दृढ़ता कैसे दे रहे हैं। इसका जवाब में भगवान 15 श्लोक नंबर 15 में बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानमपोहन च विदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं भगवान किधर है किधर है बोल के ढूंढने का जरूरत नहीं है, हर जीव के अंदर मैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हर जीव के हृदय में मैं विराजमान हूं, बैठा हूं हर जीव के अंदर। बैक्टीरिया यस, वायरस यस, हाथी हाँ, हाथी हो वायरस हो गधा हो मनुष्य हो कोई भी हो, हर जीव के अंदर मैं बैठा हूं। समझो ना समझो, यकीन करो ना करो, और उसको मैं 3 चीज प्रदान करता हूं, स्मृति ज्ञान विस्मृति। अगर अंडे से सांप बाहर निकल रहा है, अभी अभी बाहर निकला है, कोई सोचे अंडे से बाहर निकला है इसको कुछ भी करो कुछ नहीं करेगा, उसको जाके चूझने के प्रयास करो तुरंत डसेगा। अंडे से अभी अभी बाहर निकला है उसको काटने का जो बुद्धि है, ये मेरा मित्र है ये मेरा शत्रु है, कहां से मिल रहा है। अब ये अंडे से बाहर निकला, आगे बढ़िया सा आम रखा है, वे देखता है ये तो मेरा खाने का चीज नहीं है, ये जाएगा जाके मेंढक चूहा इसको पकड़ के खाएगा, ये बुद्धि कहां से आ रहा है, अभी अभी आया है। अगर आप बंदर को देखते हैं, बंदर का बच्चा को देखते हैं, ठीक है माँ सिखा रहे और कोई सिखा रहे, अंडे तो वो अकेले रहते हैं, सांप हर सांप अकेला एक्सेप्ट मेटिंग सीजन में वो अकेला है, कोई नहीं सिखाया। अब साइंटिस्ट लोग इसको पकड़ पकड़ के इसको देखते हैं किधर से आ रहा है बुद्धि, किधर से आ रहा है किधर से आ रहा है। अरे उतना क्या, आप दिन रात मेहनत करके क्या देखते हो, एक बार भगवद गीता पढ़िए आपको सबको समझ में आएगा। बस भगवान बता रहे मैं हर जीव के अंदर बैठा हूं, इसका प्रत्यक्ष साक्षी यही है, प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि हर जीव जैसे बछड़ा मां से गाय से जन्म लिया वो उठ जाता है और गाय के पास जाके दूध पीना शुरू करता है, ये बुद्धि कहां से मिल रहा है। बुद्धि भगवान कह रहे हैं आप इतना चिंता करने की बात नहीं, जस्ट भगवद गीता का अध्याय 15 श्लोक नंबर 15 पढ़े तो हर जीव के अंदर मैं विराजमान हूं, मेरे से 3 चीज मिल रहा है, ज्ञान स्मृति और विस्मृति, बस इतना समझ ली। आइंस्टीन सबसे बड़ा साइंटिस्ट 20th century, दैट मीन्स 1901 टू 1999 2000 तक जो जितना भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो कोई आइंस्टीन के बराबर नहीं। 5 साल में वो एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन का बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करता था, इनका बुद्धि इतना था, और बड़ा विज्ञान बन गया, ये पूरा हो गया। जब वो मर गया, सब साइंटिस्ट मिलके इसके दिमाग के अंदर क्या है देखते हैं, उसको दिमाग को काट काट के देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, क्या है, कुछ स्पेशल है क्या, इसके अंदर इतना दिमाग कैसे आ रहा है, अंग्रेजी में फेल हो रहा है, मतलब 100-100 मार्क्स मैथ्स का, 6 साल में जाके 10वीं का पूरा परीक्षा लिख के पूरा 100 ला रहा है, इतना था उसका बुद्धि। तो इसका बुद्धि कहां से आ रहा है, पूरा दिख के देख रहे हैं। अरे मूर्ख, जाके भगवद्गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 15, बुद्धि देने वाला केवल भगवान कृष्ण है, भगवान ही है। तो मगर हम लोग एक्चुअली नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये जो कलमश भरा हुआ है वो इसको समझाने जो भी समझाए तो भी समझने का हमारे अंदर नहीं जाता है, क्योंकि हमारे अंदर सच्ची में ये असुर गुण थोड़ा सा भरा हुआ है। असुरों का लक्षण और देवताओं का लक्षण भगवान श्री कृष्ण अध्याय 16 में बहुत डिटेल में बताते हैं, हम वो देखना चाहिए, तभी हमें एक्चुअली हम देख सकते हैं। ये मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, मेरे पास इतना धन है, और ये धन से मैं ये प्रणाली बना रहा हूं, ये प्रणाली से मुझे और कुछ धन मिल, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्यम इदम सुखम इदम अस्ति इदम अति में भविष्यति पुनर्धनम। मैं ये जो मेरे पास इतना धन है ना, मेरे पास जितना धन है मेरा फ्रेंड्स और इसमें किसी के पास नहीं है, वो अपने आप सोचता है, हर एक ऐसा ही सोच रहा है, और वो सोचता है कि मैं ऐसे प्रणाली बना रहा हूं कि ये धन और वृद्धि होगा और मेरे पास फिर वापस आएगा और मैं बड़ा सुखी बनूंगा, और मैं सुखी बनता हूं और यज्ञ करता हूं। ये पूरा दम्भो दर्पो विमानश्च क्रोध पौरुषमेव च, ये पूरा लक्षण जो है ये असुर का लक्षण। हम एक बार हम अपने आप को देखना चाहिए कि मैं कितना तक मेरे अंदर ये असुर का लक्षण जो है चले गया है। अगर नहीं चले गया तो भगवान श्री कृष्ण 16 अध्याय में बताते हैं, जो भी ऐसे असुरी प्रवृत्ति है उनको मैं लोअर लेवल दूसरे और मनुष्य जन्म से अधम अधम योनियों में मैं गिरा देता हूं, तो उससे बाहर। और इसका मेन कारण भगवान बताते हैं अध्याय श्लोक नंबर 16 अध्याय 16-21 त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तदा लोभम तस्मादेत त्रयम त्यजेत। ये जो असुरी प्रवृत्ति का जो भी है ना, वो किधर जाने का प्रयास कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन हो रहा है किधर जाने का, 3 द्वार है, काम क्रोधस तदा लोभ, ये इंद्रियों को तुष्ट करना ही उनका लक्ष्य। अगर इंद्रियों को तुष्ट करना ही लक्ष्य रखा है, वो इस तरफ जा रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, जो भी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, असुरी स्वभाव आ गया है, तो वो चल रहा है उस तरफ, 3 द्वार नरक का 3 द्वार, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तदा लोभ, काम क्रोध और लोभ, ये 3 द्वार है, इसके अंदर घुसने का सब लोग जा रहे हैं, जब जा रहे हैं कॉम्पिटिशन हो रहा है, नहीं नहीं उसके अंदर जाना बड़ा खुशी मिलेगा, अपना इच्छाएं काम इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, जब पूर्ण नहीं होगा, होगा ही नहीं, तो क्रोध आएगा, क्रोध आने के बाद, और अगर जो भी 1-2 इच्छा पूरा हो गया, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, होगा नहीं, क्रोध से पूरा बस उनका जीवन ऐसा ही चलते रहेगा, और इच्छाएं कुछ इच्छा खत्म, कुछ इच्छा 1-2 इच्छा पूर्ण हुआ और बहुत सारी इच्छा उत्पन्न हुआ और क्रोध आ गया, नहीं नहीं मैं उसको पाना ही पाना है, ऐसा ही चले जाता है जीवन, क्योंकि उनको जीवन का एक्चुअल वैल्यू समझ में नहीं आता है। एक राजा था, एक राजा के पास आ गया एक लकड़ी काटने वाला, लकड़ी काटने वाला लकड़ी काटता है और वो रात को उसको जलाता है, उसके पास लगा देता है थोड़ा सा अग्नि, और सुबह उठ के देखता है कोयला बन जाता है, कोयला को ले जाके बेचता है। वो इतना गरीब था, एक बार वो राजा के पास जाके, हे राजा मुझे कुछ आप हेल्प करो, मुझे सहायता करो। राजा कहते हैं तुम क्या करते हो? मैं लकड़ी काट सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हें ना मैं वो उधर जाओ, जगह बताते हैं, उधर जाओ, उधर बहुत सारा वो वृक्ष है, वो काट के आप बेचो और देखो आपका जिंदगी चेंज हो जाए, पूरा बदल जाएगा, जाओ उधर जाओ, उधर जाओ वो वाला वो इनको दे दो। उधर गए, उधर जाके वो रोज वो काटते हैं और उधर उसको अग्नि लगाया, फिर घर जाके कुटिया में सो जाता है। सुबह जा रहे हैं, फिर वही कोयला को ले जाके बेच रहा है। कुछ दिन के बाद राजा उधर से गुजर रहा था, उनको याद आता है कि अरे मैंने ये पूरा वृक्ष इनको दिया था, इधर तो ये किधर गया, आदमी किधर गया। देखो अपना सैनिकों को भेजते हैं, सैनिक आके बोलते हैं वो छोटा कुटिया में इस तरफ बैठ, कुटिया में बैठा है अभी भी कुटिया, वो छोटा कुटिया, वो कुटिया भी ऐसा लग रहे हैं कि पता नहीं कब खत्म हो जाएगा ऐसा। अरे ये क्या हुए, उसको बुलाइए। वो आ रहा है, फिर महाराज जाते हैं ठीक है मैं कुछ जाऊंगा देखूंगा असल क्या हो रहा है। उधर जाके देखते हैं, अरे क्या हो गया, तुम ऐसे कैसे हो? वो कहते हैं आपने जो वृक्ष दिया है वो मैंने काट काट के रात में लगा देता हूँ अग्नि, फिर कोयला लेके। राजा उसके ऊपर इतना गुस्से से देखते हैं, अरे मूर्ख तुमको समझ में नहीं आया, वो तो चंदन वृक्ष था, तुम चंदन वृक्ष को काट रहे हो, रात में अग्नि जला रहे हो, घर जाके उधर दूर घर है, घर जाके सो जा रहे हो, सुबह आके कोयला वैसा ही कोयला, तुम्हें समझ में नहीं आया, ये छोटा सा ये है, ये चंदन है, छोटा सा एक पीस उसको दिखाते हैं, ये देखो ये छोटा पीस, ये छोटा टुकड़ा, तुम जाओ अभी मार्केट में, बाजार में जाओ और जोर जोर से चिल्लाओ चंदन चंदन, कौन लेता है चंदन, देखो तुम्हें समझ में आएगा। वो गया जाके चंदन 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 बोल के चिल्लाया, उसको इतना पैसे मिला, बोलते अरे इतना पैसे मिला, घर आके गया मेरा इतना सारा चंदन वृक्ष था गया। कभी उसके दिमाग के अंदर ये भी नहीं आया कि ये चंदन वृक्ष है, कुछ तो सोचना चाहिए, नहीं सब कुछ काट दिया, अब उधर जाके देखते हैं कुछ आई क्या नहीं, सब खत्म कर दिया, दूसरे पेड़ को काट रहा है। वो रो रो के बीवी के बीवी बच्चों के साथ रो रो के वो चिल्लाता है, गया मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, हमारा जीवन जितना बचा हुआ है अगर हम उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, हमारा जीवन मनुष्य जीवन भगवान के सन्निधान में वैकुंठ धाम गोलोक वृंदावन धाम में जाने के लिए वो प्रैक्टिस करने के लिए एक साधन है। आप कार में बैठे हैं दिल्ली जाने के लिए, वो कार आप वैल्यू समझना चाहिए कार का, कार को अगर आप वैल्यू नहीं समझे तो उसका आप एंड गम्य टारगेट आप नहीं पहुंच सकते। वैसा ही अगर हम शरीर को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम भगवान का गुणगान भगवान का भक्ति में हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते, उधर ही बैठ जाते हैं, जो पीछे तो नहीं जाएंगे, जा रहे हैं भगवान के सन्निधान में जाने के लिए, मगर अगर हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, आज नजदीक में है जा सकते हैं, नहीं उतना आसान नहीं है, हमारे पास जितना टाइम है हमें पता नहीं, और मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं कौन सा शरीर मिलता है, हमें कोई गारंटी नहीं है, जब शरीर मिला है तब तुरंत उसको हम यूज करना चाहिए। ये मटेरियल जो भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, ये जो इंद्रियों का जो तुष्ट करने के लिए जो भी काम करते हैं उसका कोई फायदा एक्चुअली नहीं है, ये इंद्रिय ऐसा ही पूछते रहता है, जितना भी तुष्ट करने का प्रयास करें ऐसा कोई आदमी कोई मनुष्य अब तक पैदा नहीं हुआ जिसका इंद्रिय पूरा संतुष्ट हो चुका है भौतिक चीजों से। मगर इंद्रियों को संतुष्ट करने का शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान के सेवा में इंद्रियों को लगाते हैं तब वो अपने आप संतुष्ट हो जाता है। ये भौतिक चीजों से संतुष्ट होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, क्योंकि ये भौतिक चीजें भौतिक ही दे रहा है आत्मा को। आत्मा एटर्नल, आत्मा शाश्वत है। जब आत्मा शाश्वत है, आत्मा का मिला है ये अशाश्वत शरीर, वो बार बार मांगता है मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरा दूसरा नहीं चाहिए, ये। अब मनुष्य शरीर में हम सोचना चाहिए कि ये शरीर मिला है, अब हमें शाश्वत शरीर मिलना चाहिए मेरा आत्मा को। ये अशाश्वत शरीर से मैं कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा, मुझे कभी खुशी नहीं मिलने वाला है। तो भगवान के पादों को आश्रय लेके भगवान के शरण में जाके हरे कृष्ण महामंत्र से ही हम इस कलयुग में भगवान के धाम जा सकते हैं। अगर हरे कृष्ण महामंत्र को नहीं अपनाते हैं, अगर कोई ज्ञान, मैं इतना बड़ा पंडित हूं, अगर भक्ति में उस ज्ञान को यूज नहीं करते तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। एक बड़ा आदमी था, वो स्विमिंग के बारे में बुक लिख रहा है, स्विमिंग पानी के अंदर कैसे स्विम करना, पानी के ऊपर कैसे स्विम करना, नदी के अगेंस्ट में, नदी के विपरीत में कैसे स्विम करना, नदी के नीचे कैसे स्विम करना, ये पूरा। अब उसको तैरना नहीं आता और कैसे कैसे तैरना लिख रहा है, क्या फायदा? ज्ञान अर्जन करके श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक पढ़ रहा है कोई, मगर उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसको प्रैक्टिकली उसका यूज नहीं कर रहा है, उसको अपना नहीं रहा है, इसका क्या फायदा? इसका कोई फायदा नहीं। वैसा ही अगर हम जो भी हमारे पास जितना भी ज्ञान है उसको भगवान की सेवा में पूरा पूरा यूज करें और चार लोगों को ये चीज बताएं कि भगवान के सन्निधान जाने से ही हमारा आत्मा को तुष्ट होगा। कोई भी ये शरीर से खुशी नहीं पा सकते हैं और इसका एक ही मार्ग है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका आज आई थिंक इतना 9 बजने वाला है, आपका प्रश्न कुछ रहा तो पूछिए, अगर मैं दे सकता हूँ जवाब। आप सब लोग बहुत सीनियर और अच्छा डिवोटीज हैं, अच्छा भक्त हैं, मेरे पास उतना ना ज्ञान है ना भक्ति है, फिर भी कुछ आपके आशीर्वाद से बोलने का प्रयास किए हैं। हरे कृष्ण बताए। बहुत बढ़िया प्रश्न, ये इतना बढ़िया प्रश्न, आप सब लोग एक मिनट रुक के जवाब सुन के जाना चाहिए। अर्जुन अध्याय 3 श्लोक नंबर 36 में पूछते हैं, आदमी को पाप करने का इच्छा नहीं है मगर वो पाप कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई उसको बलपूर्वक लगा रहा है। 3:36 अर्जुन वाच, अथ केन प्रयुक्तोयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। ऐसा लग रहे हैं बलपूर्वक उसको पकड़ के बाहर है, उसको सब कुछ पता है, कोई पकड़ के उसको, कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कोई भूत प्रेत उसको पकड़ के नहीं करवा रहा है। भगवान बता रहे हैं काम, ये श्री भगवान वाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भोग महाशन्नो महापापना विद्ये नाम मिह वैरिणाम। ये काम और क्रोध जो है ये है अंदर बैठा हुआ है, वो काम करवा रहा है। काम क्रोध उनके अंदर इच्छा है, ये मुझे पाना है, ये करना है, वो करना है, ये असुर का लक्षण यही है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भोग, इनको समझ में नहीं आता और इसको मूल से ही स्टार्टिंग से ही उसको खत्म करने, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशन्नो महापापना, ये विश्व का इस पूरा जीवों का ये एक्चुअली शत्रु है, इसको नाश करो, यही ये पाप कार्य करवा रहा है नोइंगली, समझ में आते हुए भी, समझ में आ रहा है ये पाप कार्य है, फिर भी पाप कार्य में लग रहे हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं, इसलिए ये तीन कैसा भी करके हमारे अंदर क्रोध को खत्म करें और काम इच्छाओं को भगवान के इच्छा में परिवर्तन करने का प्रयास करें। हम जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगाएं, इधर से शुरू होता है। मेरा बेटा आया है, दिल्ली से आया है, वो तो पूरी मांग रहा है, पूरी सब्जी, पूरी आलू का पनीर का सब्जी मैं मेरा बेटा के लिए बनाया। हाँ हाँ, भोग लगाओ भोग लगाओ भोग लगाओ, फिर किसके लिए बनाए? हाँ मेरा बेटा के लिए, बेटा तो पूछ रहा है पूरी। अरे किसके लिए बनाए? भगवान के लिए नहीं बना रहे। ये भावना अगर हमारे अंदर ये भावना आता है कि भगवान आज पूरी और आलू पनीर का सब्जी खाने का इच्छा उनके अंदर आया है, वो मेरा बेटा के माध्यम से बता रहा है मुझे, मेरे दिमाग के अंदर आइडिया आया था कि मैं रोटी बना दूं आपको करूं, मगर रोटी कह रहे नहीं नहीं आज रोटी नहीं, बेटा के माध्यम से बता रहा है कि मुझे रोटी, हे कृष्णा तुम बता रहे हो, तुम्हारे लिए मैं पूरी और जो सब्जी मांगा है मैं बना के आपको खिलाता हूं, फिर बेटा को दिया। ये देखिए, ये भावना सेम चीज जो हम काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कृष्ण भावना में, पूरा का पूरा कृष्ण भावना में परिवर्तन करते हैं तो हमारा जीवन में हम जो भी काम कर रहे हैं भगवान के लिए, आखिरी में ऐसा ही हो जाएगा, जो भी काम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान संतुष्ट हो जाएगा, भगवान खुद ज्ञान देगा कैसे उनके धाम में आना है। हरे कृष्ण। ठीक है, और कुछ प्रश्न? ओके। श्रीमद् भागवतम महापुराणम की जय, जगद गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।